ज्ञानी का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु जेहन में बस जाए। गुरु जेहन में बस जाए। तिन्नाणम तारियाणम वितराग परमात्मा आगमवाणी और बोधि प्रदाता सदगुरु देव के श्री चरणों में भावमय वंदना। मंच पर विराजमान पूज्या साध्वी वर्या के श्री चरणों में वंदन। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। हर एक मनुष्य जीवन के अनुभवों से लगातार शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहरी वातावरण में तो प्रेरणाएं सतत बनी ही रहती है, लेकिन उन प्रेरणाओं से भी ज्यादा जरूरी चीज है शिक्षा लेने वाली दृष्टि का होना, सीखने वाली आंख का होना। जब तक सीखने वाली दृष्टि, सीखने का नजरिया हमारे भीतर ना हो, तब तक हमारे चारों ओर कितनी भी प्रेरणाओं की बारिश क्यों ना हो, हमारे अनुभवों के घड़े खाली ही बने रह जाएंगे। जिसके पास सीखने की नजर दृष्टि है वह हर चीज से सीख सकता है, हर एक व्यक्ति से सीख सकता है, हर एक घटना से सीख सकता है, न्यूज़पेपर पढ़ के भी सीख सकता है, टीवी देख करके भी सीख सकता है, लोगों की बातें सुन करके भी सीख सकता है। जिसके पास सीखने की नजर है वो किस किस से और कहां तक और कैसे सीख सकता है, इसका एक बहुत प्यारा उदाहरण आता है लुकमान हकीम का। कहते हैं अपने जमाने में वह प्रसिद्ध वैद्य था लुकमान हकीम, और उसके पास में हर एक प्रकार की बीमारी का इलाज हुआ करता था, वैद्य था। और पहले जमाने के वैद्य पूरे शरीर का इलाज कर देते थे, आज के डॉक्टर्स की तरह नहीं कि आंख के डॉक्टर के पास अलग जाना पड़ेगा, कान के लिए अलग जाना पड़ेगा, गले के लिए अलग जाना पड़ेगा, पेट के लिए अलग जाना पड़ेगा, पैरों के लिए अलग जाना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन का युग नहीं था तब, एक ही हकीम गांव भर के लोगों को इलाज कर सकता था। उस लुकमान हकीम की ख्याति उस जमाने में आसपास के बहुत देशों तक फैली। तो एक बार किसी व्यक्ति ने उस लुकमान हकीम से सवाल किया कि हकीम साहब, आप इतने समझदार, इतने विद्वान, इतने ज्ञानी कैसे हुए, आपने ये सारी चीजें सीखी किससे, किसने आपको ये सारा बोध दिया, शिक्षा दी, ज्ञान दिया। लुकमान हकीम मुस्कुराया और बोला कि मुझे आयुर्वेद का ज्ञान, वैद्यगिरी का ज्ञान स्वयं वनस्पतियों ने दिया, स्वयं जड़ी बूटियों ने दिया। सुनने वाला आश्चर्यचकित, वो बोला वृक्ष ज्ञान कैसे देंगे, जड़ी बूटी स्वयं ज्ञान कैसे देगी, वो तो बोलती नहीं है। बोलती है, सुना आपने कभी पत्तियों को बोलते हुए, वृक्षों को बोलते हुए, जड़ी बूटियों को बोलते हुए, सब्जी फल भाजी को बोलते हुए सुना है कभी, किसी ने नहीं सुना, लेकिन लुकमान हकीम ने सुना था। यकीन कहता है कि मुझे इस वैद्य शास्त्र का ज्ञान स्वयं वनस्पतियों ने दिया। पूछने वाला हैरान बोला, वनस्पति अपना ज्ञान कैसे देगी, वो तो मूक प्राणी है। वो बोला, वह मूक नहीं है, सुनने का कान चाहिए, देखने की आंख चाहिए, सुनने का काम चाहिए और फील करने वाला दिल चाहिए, हृदय चाहिए। अगर आपका दिल, आपका हृदय महसूस कर सकता है, आप किसी वृक्ष के पास जाकर के बैठो और सुनो उसको, और वो कहता है कि मैं पौधों के पास घंटों घंटों बैठता था, जंगलों में महीनों बिताता हूं, पेड़ों के पास बैठा रहता हूं, वृक्ष खुद मुझसे बातें करते हैं, वृक्ष खुद मुझे बताते हैं कि मेरी छाल का क्या उपयोग हो सकता है, मेरे पत्तों का क्या उपयोग हो सकता है, मेरे फलों का क्या उपयोग हो सकता है, मेरी जड़ें किस काम आ सकती है, और ये सारी बातें वे मेरे अंदर आकर के मुझे बोलते हैं। ऐसा कैसे? वो कहता है कि फूल मुझसे बात करते हैं, फल मुझसे बात करते हैं, वृक्ष मुझसे बात करते हैं, पौधे मुझसे बात करते हैं, ये स्वयं मुझे बताते हैं कि हम मानव जाति के लिए, हम प्राणी जगत के लिए कहाँ और कैसे उपयोगी हो सकते हैं। अभी ये बातें सुन के हमें हैरानी हो रही है, लेकिन वो दिन थे जब इंसान पक्षियों से बातें करता, पशुओं से बातें करता, उनकी बोली को समझता था, और इंसान वृक्षों की बोली को भी समझता था। आज तो हम घर में साथ रहने वाले लोगों की बोली को भी नहीं समझ पाते, जो बोल रहे हैं उनकी बोली को भी नहीं समझ पाते, तो जो हमारी तरह नहीं बोल रहे उनकी बोली को समझने के लिए हमारे पास में कान ही कहाँ, आँख ही कहाँ, हृदय ही कहाँ। आज हम लोग कितने संवेदन शून्य होते जा रहे, हमारी संवेदनाएं संकीर्ण होती जा रही, सीमित होती जा रही, हमारी भावनाएं स्वार्थमय हो गई है, हम इतने ज्यादा सुविधा परस्त हो गए, सुविधा के लालची हो गए, आलसी हो गए, प्रमादी हो गए। ये हम सबको केवल आई मी माई सेल्फ नजर आता है, बस मैं नजर आता हूं, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा सम्मान, मेरा अपमान, मेरा आपके जीवन में क्या है स्थान। हर आदमी अपना स्थान दूसरों की निगाहों में देखना चाहता है, अपने सुखों के लिए बात करना चाहता है, औरों के सुखों के लिए हम कहां सोच पाते हैं। हमारी भावनाएं कितनी स्वार्थमय और कितनी संकीर्ण हो चुकी है, जरा सोचो तो सही। मां को अपने बच्चे की आवाज सुनाई पड़ेगी, लेकिन अगर देवरानी जिठानी का बच्चा भी घर में बैठा है और उसकी आवाज आई, शायद ही सुनाई पड़े। किसी और के बच्चे की आवाज, किसी और का दुख शायद ही दिखलाई पड़े। ये लुकमान हकीम कह रहा है कि मुझे वनस्पतियां खुद बोल के कहती है, मेरा गुरु मुझे वैद्य शास्त्र का ज्ञान देने वाला ये संपूर्ण प्राणी जगत है, ये प्राणी जगत ही है मुझे जो सिखाता है, मैं केवल उसके पास जाके बैठता हूं, और जब पास जाके बैठता हूं तो मेरे हृदय के तार इनके हृदयों के साथ जुड़ जाते हैं, मेरी रूह इनकी रूह से वार्तालाप करती है, मेरा मन मौन हो जाता है, और जब जब मन मौन होता है तभी रूह से रूह का साक्षात्कार हो पाता है। जब तक मन मौन नहीं होता तब तक हृदयों का संवाद सुनाई नहीं पड़ सकता। और आज हम सब की दिक्कत क्या है, हमारा मन मौन ही नहीं होता, हर वक्त व्याख्या करता चला जाता है, जिस किसी से मिलता है उसकी टीका टिप्पणी चालू कर देता है। हम जिससे बात कर रहे होते हैं, बात करते वक्त उस व्यक्ति से किसी और विषय की बात करते हैं और उस व्यक्ति के पास से चले जाने पर उस व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं। नहीं, दो मित्र मिलेंगे, तीसरे मित्र की चर्चा चालू होगी, और जब उन दो मित्रों में से एक चला जाएगा तो वो दूसरा मित्र उस पहले वाले मित्र की जो जा चुका है उसकी चर्चा चालू कर देगा। कहेगा कैसा बेवकूफ आदमी है, कैसे कैसे बोलता है, इसको ये नहीं आता, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मजा आया ना सुबह सुबह मैंने उसको उल्लू बना दिया। लोग कैसे कैसे मन ही मन उनके बारे में बोलते जा रहे हैं जिनसे अभी मिल करके रहे हैं, और इस तरह से हमारा मन लगातार अनर्गल बातें करता चला जाता है, व्यर्थ की बकवास करता जाता है और व्यर्थ की टीका टिप्पणियां करता जाता है, और मन का ये विचारात्मक प्रवाह इस तरह से सतत चालू रहता है कि हम सारे ही लोग अपने में ही बोलते जाते हैं, अपने में ही उलझे चले जाते हैं, और सामने आने वाले लोगों के साथ में कभी हम शांत होकर के मुलाकात कर ही नहीं पाते। सामने वाले लोगों के हृदयों तक हमारे हृदय कभी मिल ही नहीं पाते। मिलाने को लोग हाथ भी मिलाते हैं और गले भी मिलते हैं, लेकिन वाकई देखा जाए तो दिल से दिल कहां मिलते हैं। और जो दिल से दिल मिलते नजर आते हैं वो भी केवल तब तक ही जब तक कि कुछ स्वार्थ हो, कुछ कामनाएं हो, कुछ इच्छाएं हो। जरा स्वार्थ में कोई बाधा आई नहीं, ब्रेकअप, रिश्ते टूट जाते। जरा अहंकार को कोई चोट पहुंची, रिश्ते टूट जाते। क्यों? क्योंकि रिश्ते बड़े नाजुक बने हैं हमारे। यह अहंकार के धरातल पे जो रिश्ते बनते हैं वह अहंकार ही वास्तविक नहीं है, इसीलिए वह प्रेम भी वास्तविक नहीं होता, वह संवेदनाएं भी गहरी नहीं होती। और तब हर आदमी जिनके साथ रहता है वहां असंतुष्ट सा नजर आता है, जिन लोगों के बीच में रहता है उन लोगों के प्रति शिकायतों से भरा नजर आता है। और जब तक हम जिन लोगों के साथ हैं उनके प्रति शिकायतों से भरे हैं, धार्मिक होने की संभावना ही नहीं है। धार्मिक होने की संभावना नहीं है। धार्मिक होना तब तक संभव नहीं जब तक हमें हार्दिक होना नहीं आया हो। हार्दिक हुए बिना धार्मिक नहीं हुआ जा सकता, और हार्दिक होने के लिए इस मन की चपड़ चपड़ से बाहर आना जरूरी है। इस मन की महत्वाकांक्षाओं से, वितृष्णाओं से, शिकायतों से, संदेहों से, आशंकाओं के घेरे से हटना जरूरी है। मन का जब तक ये स्वार्थ, सीमित स्वार्थ, ये शुद्र सोच परे नहीं होती, तब तक हमारा हृदय निस्वार्थ धड़कता नहीं है, निस्वार्थ दूसरे की संवेदनाओं को ग्रहण नहीं कर पाता, निरपेक्ष नहीं हो पाता। और जब तक दिल निरपेक्ष नहीं होता, अपेक्षा मुक्त नहीं होता, तब तक हम धार्मिक नहीं हो सकते। धार्मिक होने के लिए धर्म क्रिया करनी नहीं, हृदय का अपेक्षा मुक्त होना ज्यादा जरूरी है। और हार्दिकता पहले जहां है वहां साधी जाती। लुकमान हकीम था जो वृक्षों को सुनता था, अपने जमाने का अप्रतिम वेद्य हुआ वो, जिसको वनस्पतियां बोल के बताती थी मैं क्या हूं, मेरी क्या विशेषता है, मेरे से किस तरह की औषधि बन पाएगी, और इसका मिश्रण कब, कहां, कैसे, किस मात्रा में करना, ये सारा ज्ञान मनुष्य को स्वयं वनस्पति ने दिया। हम उस संवेदना के स्तर की बात करें तो हम अपने आप को कहां पाते हैं, हम अपने आप को कहां पाते हैं। हम जिस खाने को बनाते हैं, जिन सब्जियों को आप लोग सुधारते हो, कभी उन सब्जियों को भावों से भर के धन्यवाद दिया, कभी धन्यवाद दिया उन सब्जियों को, उस भोजन को जो हमारा पेट भरता है? न केवल पेट भरता है, जीवन ऊर्जा प्रदान करता है। उस भोजन को कभी दिल से, हृदय से धन्यवाद निकला? सोचो, किसी के घर गए, किसी पार्टी में गए, प्यास लगी थी, कोई सामने वाला व्यक्ति आपके लिए ग्लास पानी लेकर आया, आपने पानी लाने वाले को थैंक यू तो बोला होगा, बोला होगा ना? प्यास के क्षणों में किसी ने आपको पानी पिलाया, आपने पानी देने वाले को तो थैंक यू जरूर बोला होगा, लेकिन क्या कभी उस पानी को थैंक यू बोला जो सदा हमारी प्यास बुझाता है, जीवन देता है, जिसकी वजह से प्राण सुरक्षित रहते हैं, जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते? उस पानी को कभी धन्यवाद निकला? सोचो, निकला नहीं ना? जिन वृक्षों के पास से हम गुजरते हैं, वे वृक्ष हमें सतत ऑक्सीजन दे रहे हैं, पूरा वायुमंडल सुरक्षित कर रहे हैं। श्वासोश्वास हम जिस वातावरण में ले रहे हैं, उन वृक्षों के प्रति हमारे मन में कभी प्रेम आया, धन्यवाद आया, दुआ निकली, उनके मंगल की कामना पैदा हुई हृदय में? नहीं। जहां भी जाओगे ना, अपने मंगल की कामना करोगे, भगवान मेरा भला करना ये कहोगे, मेरे परिवार का भला करना ये कहोगे, लेकिन वो जो पूरी प्रकृति जो जीवित है, प्राणी जगत है, एक जीवित ईश्वर है, उसके प्रति हमारे हृदय में कभी दुआ नहीं निकलती? देखो, क्या पता कुछ वृक्ष भी है जो हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे कान सुनने के लिए खुले नहीं है, हमारे मनोमस्तिष्क अपनी स्वार्थपरक सोच से पटे हुए हैं। जरा भी अवकाश ही नहीं है हमारे भीतर में कि किसी और की आवाज आए और हमें छू सके, किसी और का संगीत हमारे प्राणों को निनादित कर सके, जरा सा अवकाश ही नहीं है हमारे भीतर। और जब तक एक व्यक्ति अपने भीतर अवकाश पैदा नहीं कर सकता, देश अवकाशिक व्रत, देश अवकाशिक व्रत श्रावक के 10वां व्रत आता है, जब तक वो अपने भीतर में जरा सा अवकाश, देश यानी थोड़ा, अवकाश यानी रिक्त स्थान, जब तक वो थोड़ा सा रिक्त स्थान प्रकट नहीं कर सकता अपने भीतर में, तब तक प्राणी जगत को सुनने की क्षमता उसके भीतर कहाँ आएगी, देखने की क्षमता कहाँ आएगी, महसूस करने की क्षमता कहाँ आएगी? और संवेदनाओं का स्तर गिरता गिरता कहां तक आ गया कि जब हमारा स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब हमारे मां बाप भी हमें दिखलाई पड़ने बंद हो जाते हैं, सुनाई पड़ने बंद हो जाते हैं। कल कोई व्यक्ति कह रहा था कि महाराज साहब जी, मां बाप भी तब तक ही अच्छे लगते हैं, उसके बाद में नहीं। मैंने पूछा, तब तक उसके बाद में नहीं, मतलब क्या? तो बोला, जैसे जब तक बारिश आती है तब तक छाता अच्छा लगता है, और बारिश आनी बंद हो जाए तो छाता भार लगता है, ऐसे माँ बाप भी तब तक ही अच्छे लगते हैं, जब तक जरूरत होती है सुरक्षा की, जरूरत होती है स्वार्थ पूर्ति करने वाले व्यक्तियों की, धूप आतप सर्दी गर्मी से बचाने की। और जिस दिन आप अपने आप को समर्थ पाते हो, कमाने लायक बन जाते हो, उस दिन कितने बच्चे तो अपने पिता के साथ में ही कंपटीशन कर रहे होते हैं और खर्चों का हिसाब रख रहे होते हैं कि घर में अगर मैं इतना खर्चा दूं तो पापा आप इतना देना, और पापा भी कहते हैं मैं इतना दूं तो तू इतना देना। और जब घर में दिमाग लगने लग जाता और व्यापार घर में घुस जाता है, तो फिर वो घर घर ना होकर के व्यापारिक केंद्र ही बन जाता है, एक बनिए की दुकान ही बन के रह जाता है, जहाँ हर एक बात पे माप तोल नाप तोल हिसाब किताब गणित आने लग जाती है, वहाँ प्रेम खत्म हो जाता है। क्योंकि प्रेम अगणित है, व्यापार गणित है। लेकिन ये हो रहा है कि हमें अपने साथी सुनाई नहीं पड़ते, दिखलाई नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि हम सबके पास भी अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं, अपनी अपनी शर्तें हैं, अपनी अपनी जरूरतें हैं, अपनी अपनी चाहते हैं। और हम जब लोगों से मिलते हैं तो लोगों से नहीं मिलते, अपनी चाहतों से मिल रहे होते हैं। हम जब लोगों से बात करते तो उनसे बात नहीं कर रहे होते हैं, अपनी अपेक्षाओं से बातें कर रहे होते हैं। और जब हमारी अपेक्षाएं पूरी होती है तो हम बातें करते हैं, जब अपेक्षाएं पूरी होने का रास्ता नजर आता नहीं है तो हमारी बातें बंद हो जाती है। तो बातें किन से थी? इंसानों से थी, अपनी चाहतों से थी, अपने लगावों से थी, अपनी आकांक्षाओं से थी। इसीलिए हम लोगों का धार्मिक होना कठिन हो गया, क्योंकि निस्वार्थ ही नहीं है। हम निस्वार्थ ही नहीं हो पाते, हम निरंकार ही नहीं हो पाते किन्हीं क्षणों में, तो धार्मिक होने की तो संभावना ही कहाँ है। हाँ, औपचारिकता निभाई जा सकती है, धार्मिक क्रियाकांड करने का दिखावा किया जा सकता है, नाटक किया जा सकता है। जैसे वार त्योहार पे लोग कपड़े बदलते हैं, ऐसे ही हम लोग समय समय पर जोश आने पर या कोई प्रेरणा आने पर ऐसे धार्मिकता के नाटक वो मुखौटे ओढ़ सकते हैं। लेकिन धार्मिकता तब तक जिंदगी में संभव नहीं है जब तक आदमी स्वार्थ रहित संवेदनशील ना हो सके, हार्दिक ना हो सके। अब फिर कुछ शिक्षाएं भी हमें ऐसी मिल जाती है, अपने अपने कल्याण की सोचो, सबको पढ़े रहने तो सब अपने अपने कर्मों का फल भोगेंगे। अब ये ऐसी शिक्षा जब मिल जाती है तो लोग धार्मिकता के नाम पे और ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं। और स्वार्थ इस कदर घुस जाता है लोगों के घरों में, लोगों की सोच में, लोगों के जेहन में, कि उन्हें दूसरों की सेवा करना भी ऐसा लगता है। एक भाई हमसे पूछ रहा था, महाराज साहब जी, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है क्या? हमने कहा जी हाँ, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। तो बोला, फिर अगर हम कोई बीमार की सेवा करेंगे तो उसके कर्म के फल भोग में बाधक तो नहीं बन जाएंगे? एक बहू ने भी ये सवाल किया अपनी सास के लिए कि वो अपने कर्मों का फल भोग रही है, मैं सेवा करके क्या करूंगी? उसके कर्मों के फल उसके कर्म कटने चाहिए, वो फल भोगेगी तो इसी जन्म में कट जाएंगे, मैं सेवा करूंगी तो वो फल भोग नहीं पाएगी तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, इसलिए मैं सेवा ही नहीं करती। बताओ, हम धर्म की शिक्षाओं को किस कदर उल्टा ले सकते हैं? ले सकते हैं, क्योंकि हम स्वार्थी लोग हैं। हमें समझ नहीं आता कि यहां दूसरा जैसा कोई है ही नहीं, सब आत्म रूप है, सब निज रूप है। जिससे आप मिलते हो वो सब आप ही हो, जिसके साथ आप रहते हो वो आप ही हो, जिसको देखते हो वो आप ही हो, जिसको सुनते हो वो आप ही हो। लेकिन ये बात समझ नहीं आ सकती, क्योंकि ये बात शब्दों की नहीं है, ये बात अनुभूति की है। हार्दिक हुए बिना ये चीज महसूस नहीं होगी, और महसूस हुए बिना वो परिवर्तन नहीं आ सकता। एक एग्जाम्पल से समझो, आपका बच्चा जब अपनी स्कूल के अंदर स्टेज शो कर रहा होता है, चाहे एनुअल डे है चाहे कॉम्पिटिशन डे है, और आप सामने बैठे हो और आप अपने बच्चे को जब बढ़िया गाते हुए, बढ़िया नाचते हुए, बढ़िया बोलते हुए, स्पीच देते हुए देखते हो, तो आपको क्या महसूस होता है? जैसे मैं ही बोल रही हूं, मेरा ही विस्तार, मैं अपने आप को गाते हुए देख रही हूं, मैं अपने आप को सुनते हुए देख रही हूं, मैं अपने आप को इस प्रतिभा में, इस अभिनय में देख रही हूं। आप अपने आप को वहां देखते हो ना। आपका बच्चा है तो आपको अपने आप को विस्तृत होते हुए देख पाते हो। जब तक ऐसा ही विस्तार अन्य प्राणियों के साथ नहीं हो सकता, तब तक धार्मिक होने की संभावना नहीं है। जब तक भेदभाव है तब तक धार्मिकता की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बातें हो सकती है, धर्म के नारे हो सकते हैं, एक्चुअल धार्मिक आदमी तब तक हो ही नहीं सकता जब तक उसके हृदयों में भेदभाव पड़ा है। इसीलिए जितने ही सांप्रदायिक लोग होते हैं ना, और धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े करने वाले लोग होते हैं ना, इन सब लोगों को धर्म का जरा भी बोध नहीं हुआ, आत्मा में छुआ ही नहीं धर्म। अगर छुआ होता तो वे किसी आदमी को अपमानित कैसे कर सकते थे, किसी के साथ घंटों बहस कैसे कर सकते हैं? क्या उनका हृदय नहीं धड़कता? क्या उनको दूसरे की अशांति समझ नहीं आती? क्या उनको दूसरे की संवेदना अपने भीतर महसूस नहीं होती? और नहीं होती है तो भला है, अभी भी संसार के बाजार में ही घूमने लायक है। अभी उन्हें समझ नहीं आएगी, इसीलिए हम देखिए हम कितने औपचारिक होते हैं। हम शास्त्रों को पढ़ सुन करके भी कितने बौद्धिक तंगड़ी लगाने वाले लोग बन जाते हैं, तर्क वितर्क करने वाले लोग बन जाते हैं, लेकिन हृदय की प्रेम भावना हमारी कभी विस्तृति नहीं होती। और जहां हार्दिकता ही नहीं बढ़ी वहां आत्मीयता क्या बढ़ेगी? और जहां आत्मीयता नहीं बढ़ी वहां आत्मा का विकास कहाँ होगा? और आत्मा का विकास ही नहीं हुआ तो कर्मों का श्रेय कहाँ हुआ और मुक्ति कहाँ? सब बातें फालतू की हो गई। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चांद सितारों पे छूने की बातें करते हैं, जिस जमीन पे चल रहे हैं उस जमीन को छूना भी भूल गए। जिस जमीन पे चल रहे हैं, जिस जमीन पे दिन रात गुजर बसर हो रहा है, उस जमीन को प्रणाम करना तक भूल गए हम। कितने लोग हैं जो नींद में से आंख खुलने के साथ धरती माता को प्रणाम करते हैं, बताना जरा, करते हो? बस दो चार लोग, बाकी भूल गए ना। कभी ख्याल आता कि धरती जो मुझे दिन रात सहन करती है, मेरा वजन लेती है, मेरे द्वारा छोड़े गए सारे प्रदूषणों को भी एब्जॉर्ब कर लेती है, और मैं थोड़े से बीज डालता हूं और कई गुना फसल देती है, और मैं इसको कुदाली से ठोकता हूं, काटता पीटता हूं, तब भी ये बां की तरह केवल प्रेम और वात्सल्य ही देती है, ऐसी धरती को प्रणाम। धरती के लिए प्रणाम नहीं उठा, पानी के लिए धन्यवाद नहीं उठा, भोजन के लिए आभार नहीं आया, वृक्ष और हवाओं के लिए कोई दुआ नहीं निकली, अपने संगी साथियों के लिए निस्वार्थ प्रेम नहीं आया, तो अभी हम पहली कक्षा में नहीं प्रवेश कर पाए। अभी हम इस धर्म मंदिर की पहली सीढ़ी पर ही नहीं चढ़ पाए। पहली सीढ़ी है प्रेम की, बिना प्रेम धर्म नहीं होता। निस्वार्थ प्रेम के बिना आदमी कभी अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि हम सबका जो वास्तविक स्वरूप है वही मुक्ति है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, और हम सबका वास्तविक स्वरूप बिना प्रेम के उद्घाटित ही नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? सोचो ना, हो सकता है क्या? बिना प्रेम के कभी अपना वास्तविक स्वरूप उद्घाटित होगा? और वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन ही तो मुक्ति है, वही तो परमात्मा है, उसी का ना नाम मोक्ष है। क्या हम अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए? लेकिन कहाँ आए वास्तविक स्वरूप में? हम तो सब आर्टिफिशियल बने बैठे, आर्टिफिशियल बने बैठे हैं, और अपनी इस कृत्रिमता से हमें न जाने कैसा लगाव हो गया, जो सदा अशांत कर रहा है। वो कृत्रिमता जो हमें सदा अशांत कर रही है, सदा परेशान कर रही है, सदा दुखी कर रही है, सदा तनाव में ले जा रही है, हर रिश्ते को काट रही है, तोड़ रही है, फिर भी वो कृत्रिमता हमसे छोड़ी क्यों नहीं जाती? उस कृत्रिमता की इतनी पकड़ क्यों है हमारे अंदर? क्या कभी हमने प्रेम का स्वाद नहीं चखा? शायद नहीं चखा होगा, शायद कभी निस्वार्थ प्रेम ने हमारे हृदय को आंदोलित नहीं किया होगा, तभी हमारा ये हाल है। अनिराज से कैसे संभव था कि एक आदमी प्रेम को छोड़कर घृणा को अपनाए, आनंद को छोड़कर विषाद को अपने पल्ले बांधे, ऐसा कैसे हो सकता था? हम लोगों ने प्रेम प्रेम को क्यों बेच डाला और किस नाम पे बेचा? मेरे गुरु तेरे गुरु, मेरा धर्म तेरा धर्म, मेरी संप्रदाय तेरी संप्रदाय, मेरी जाति मेरा गोत्र, तेरी जाति तेरा गोत्र, मैं बिस्सा तू दस्सा, मैं ऊंचा तू नीचा, न जाने किस किस नामों पे हमने अपने प्रेम को बांट डाला, प्रेम को बेच डाला, प्रेम को खत्म कर दिया। नहीं, एक व्यक्ति जहर खरीद के अमृत को बेचे, कैसा इंसान है हम? और फिर ढूंढते हैं, अरे कोई तो दिन आएगा जो हमारा कल्याण होगा, कोई तो भगवान आएगा जो हमें तारेगा, और जो सामने आया वो कभी दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि हम हमेशा ही किसी और दिन की उम्मीद में जिए जाते हैं। नहीं, जीवन सामने है, इसी क्षण में है, और प्रेम हम सबका स्वभाव है, हम सबका स्वरूप है। इस प्रेम को, इस संवेदनाओं को मरने मत दो, खराब मत करो, बिगड़ने मत दो, विकृत मत करो। जीवन के प्रति, हर एक प्राणी के प्रति जब तक हम हार्दिक नहीं होते, जब तक प्राणी जगत हमको अपने से बात करता हुआ महसूस नहीं होता, तब तक हम अपने स्वरूप के मंदिर में प्रवेश करने के पहले पायदान पर भी नहीं आए हैं। जिसको हम अहिंसा अहिंसा बोलते हैं ना, दमो मंगल मुखित्यम अहिंसा संयमो तवो, वो अहिंसा प्राणी मात्र से एकात्म भाव का अनुभव है। मैं और वह एक है तो नाम अहिंसा है, जैसा मैं वैसा वो, ऐसा अनुभव हो उसका नाम अहिंसा है। एक आत्मा अनुभव होना उसका नाम अहिंसा है। हमें अहिंसा की बातें करते हैं हम, लेकिन यहां एकात्मा जिनके साथ रह रहे हैं, जिन पंचेंद्रिय मनुष्यों के साथ हम रह रहे हैं, हम वहां पर भी एकात्म नहीं हो पाते। इसीलिए जब तक एक व्यक्ति को अपने परिवार में रहना नहीं आता, एक बहुत प्यारी कथा आती है, एक संत हुए, नाम था उनका रामानुज। कहते उस रामानुज संत के पास में ये तुषार जैसे एक युवक पहुंच गया, बोला महात्मा जी मैं दीक्षित होना चाहता हूँ। महात्मा जी बोले अच्छा दीक्षा लेना चाहते हो, तो आपको किससे प्रेम है? बोला वो प्रेम प्रेम वेम मुझको किसी से नहीं है हमारा साहब, इस दुनिया से मुझे तो वैराग्य है, मुझे वैराग्य है, मुझे किसी से प्रेम नहीं है, कोई अपना है ही नहीं, किससे प्रेम करना, कोई है अपना? यहाँ कोई अपना नहीं है। लोग बड़े आराम से कहते थे कोई अपना नहीं है, जैसे कि उनको जन्म बिना माँ बाप के हो गया हो, उनका पालन पोषण बिना परिवार के सहयोग के हो गया हो, और आज दिन तक का जीवन बिना धरती पानी अग्नि हवा वृक्षों के गुजर गया हो। हाँ, हम लोग कितने स्वार्थी होकर के बोल देते हैं ये कौन अपना है, बोल देते ना। तो युवक बोला कोई अपना ही नहीं है इस दुनिया में, सब स्वार्थी है। महात्मा जी मुझे किसी से कोई प्रेम नहीं है। महात्मा बोले क्षमा करना भाई, मैं तुझे दीक्षा नहीं दे सकता। वो तो सोचा था कि महात्मा मुझे दीक्षा देंगे क्योंकि मुझे वैराग्य है, मुझे इस जगत में कोई प्रेम ही नहीं है, मुझे तो वैराग्य है इसलिए मुझे दीक्षा मिल जाएगी। महात्मा बोले मैं तुझे दीक्षा नहीं दे सकता। बोला क्यों, क्यों नहीं दीक्षा दे सकते आप मेरे को? तुझे कहीं भी प्रेम होता, किसी से भी प्रेम होता, तेरे हृदय में कहीं पर द्वार दरवाजे खुले होते, देखो प्राणी जगत की संवेदनाएं महसूस हो रही होती, तो मैं तेरी उस प्रेम की भावना को विराट कर सकता था। वो संकुचित भी होता तो उसको विराट बना सकता था। अगर तुझे किसी से ही प्रेम नहीं है, जब तेरे पास प्रेम का बीज ही नहीं है, तो मैं उसे विराट विश्व का प्रेम जैसा पौधा कैसे बना सकूंगा? इसीलिए भाई मैं तुझे दीक्षा देने के काबिल नहीं हूं। अगर आपको मन में प्रेम ही नहीं है, आप दीक्षा लेने के लायक ही नहीं हो, धार्मिक होने के लायक ही नहीं हो, स्वार्थ है। जब तक निस्वार्थ प्रेमी नहीं आया, संवेदना ही नहीं आई, अपने साथियों को सुनना नहीं आया, देखना नहीं आया, बतियाना नहीं आया, उनके सुख दुख में सहयोगी बनना नहीं आया, अपने साथियों के लिए हमें जीना मरना नहीं आया, सोना जागना नहीं आया, जब तक प्रेमी नहीं है, हार्दिक ही नहीं आदमी धार्मिक कैसे होगा। पहले हार्दिक तो हो तो धार्मिक होने की बात होती है। उसे समझ तो आए कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या महसूस कर रहा है, किसको कहां जरूरत है। उसे प्रकृति समझ आए, उसे लोग समझ आए, तो उसको धर्म भी समझ आएगा, उसका प्रेम विशुद्ध किसी दिन किया जा सकेगा, और प्रेम विशुद्ध होते ही मुक्ति हो जाएगी। लेकिन इसे प्रेम ही नहीं है, उसको विशोधी के स्तर पे कैसे चढ़ाया जाएगा। महात्मा ने उसको प्रणाम किया, जाओ बेटा मैं तुझे दीक्षा नहीं दे सकता। वो युवक चला गया, लेकिन कुछ महीनों तक उस बात पे वो अटका रहा, सोचता रहा कि इतना बड़े संत मुझे दीक्षा क्यों नहीं दे पाए। गुस्से में होता आदमी तो कहता है संत में गलती है, और जिस दिन गुस्सा शांत होता है उस दिन समझ में तो आता है कि गलती कहीं मुझ में भी होगी। कुछ महीनों में उसे समझ में आया कि ये बात सही है कि मैं कभी अपने मम्मी पापा की सेवा नहीं कर सका, मैं कभी अपने घर वालों को सुन नहीं सका, उनके ताने भी सुन नहीं पाया, जबकि उनके ताने ताने नहीं थे, उनके ताने प्यार भरी उलाहना थे कि वे मुझ में कुछ जगाना चाहते थे जो जग नहीं पा रहा था, इसलिए वो मुझे ताने दे रहे थे। वो मुझ में कोई रूप देखना चाह रहे थे जो उनको देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो मुझे ताने दे रहे थे। मुझे आज समझ में आया। और जब उसको कुछ महीनों बाद समझ में आया, वो उस महात्मा को ढूंढते हुए पहुंचा, तो पता लगा कि महात्मा तो ऊपर जा चुके हैं, उनकी कुटिया खाली पड़ी है। और वो बहुत पछताया, बहुत रोया कि जिस दिन थोड़ा सा प्रेम समझ में आया तो दीक्षा देने वाले गुरु जा चुके। और जिंदगी बड़ी ऐसी है, जब तक अकल आती है तब तक राहें बंद हो जाती है, और जब तक राह पे चलते हैं तब तक अकल बहुतों को नहीं आती है, पर हमें आ जाए। धार्मिक होने के लिए ये दशा विशा जैनी अजैनी कुछ होने की जरूरत नहीं है, हृदय हो, प्रेमपूर्ण हृदय हो, निस्वार्थ भावना हो, प्राणी जगत के प्रति, हर एक प्राणी के प्रति, हर एक प्राणी के प्रति, एक इंद्र से पंचेंद्र तक, साथ रहने वाला हो या न रहने वाला हो, सबके भीतर की सोच को, अनुभव को, सुख दुख को आत्मवत महसूस करना है। हमारा हृदय इतना विराट हो पाए कि हमें दूसरा अपने जैसा ही महसूस होने लगे, दूसरा दूसरा न लगे। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस संप्रदाय के हो, नहीं हो, सब लेबल है। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो कोई बच्चों से हम पूछते हैं बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो छोटे बच्चे बोलते हैं सिक्स सी में। और अभी सिक्स क्लास में पढ़ते इतना काफ़ी नहीं था, वो स्कूल के अंदर ए बी सी डी होते हैं ना, बहुत सारी क्लासेस होती है, तो उस बच्चे को लगता है मेरी पहचान है तो सिक्स सी है। तो बेहतरीन स्कूल में पहचान, जब टीचर ले रही हो अटेंडेंस तब तेरी पहचान सिक्स सी है, पर स्कूल के बाहर आए तो तेरी पहचान में सिक्स सी लगाने की जरूरत है क्या। तो जब आपको अपना वो कंट्रीब्यूशन करना हो ना, चंदा देना हो, तब आपकी पहचान करनी पड़ेगी कि आप श्वेतांबर मूर्ति पूजन में चंदा देते हो, स्थानकवासी में चंदा देते हो, समझे। तो वहां बोलना सिक्स सी में हूं, बी में हूं, ए में हूं, श्वेतांबरी हूं, दिगंबरी हूं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन तो करोगे सामाजिक संस्थाओं में। अब हर संस्था में तो आप कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते इतने टाइम में कि आप श्वेतांबरों में भी दे दो, दिगंबरों में भी दे दो, तेरापंथी में भी दे दो, ज्ञान गच्छ में भी दे दो, श्रवण संघ में भी दे दो, हस्तिमल जी के गच्छ में भी दे दो, नाना लाल जी के गच्छ में भी दे दो। अब हर संस्थाओं में तो आप कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकोगे, आपकी लिमिटेशन है, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था से कनेक्टेड हो जाते हो। तो जब कनेक्ट होते हो, जहां आप अटेंडेंस लगवाते हो, वहां बोलना कि मैं इस संस्था का मेंबर हूं। और बाकी जब बाहर आते हो तो इतना ही बोलना कि भैया मैं सिक्स में पढ़ रहा हूँ। ये ए बी सी डी सब भेद केवल स्कूल कैंपस के अंदर टीचर्स के पहचान के लिए थे, बाहर है क्या इनकी जरूरत है क्या। लेकिन हम लोग कैसे पता नहीं बाहर जाके बोलते लोगों को, मैं श्वेतांबर स्थानक वासी हूँ, मैं श्वेतांबर देरासर वासी हूँ। अरे भैया कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम धार्मिक हो तो पता लग जाएगा, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारी भावनाओं से, तुम्हारी सोच से। और धार्मिक नहीं हो तो इतने सारे नेम प्लेट लगा करके भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वहां कोई नहीं पूछने वाला, और जो पूछता है वो भी कहीं ना कहीं अकल का पैदल होगा तभी पूछता ऐसी बातें। क्या जरूरत है? आप धार्मिक हो तो पता लगेगा नहीं क्या? जिसके मन में सेवा की भावना जागती है वो सोचता है कि इस साधु की सेवा करो और उसकी ना करो। अगर सेवा की भावना जागेगी तो भेदभाव नहीं होगा, और भेदभाव है तो सेवा कहां हुई, तो प्रेम कहां हुआ? प्रेम कभी भेदभाव नहीं देखता, सेवा की भावना कभी भेदभाव नहीं देखती। राह दिखता है तो वह भेदभाव नहीं हो सकता, और भेदभाव होता है मेरे मरा सब आए तो गुछरी बह रहा हूँ, दूसरों के मरा सब आए तो ना बह रहा हूँ, मेरे मरा सब आए तो लेने छोड़ने जाऊँ, दूसरों के मरा सब आए तो लेने छोड़ने ना जाऊँ। तो भैया वह सेवा ही नहीं जागी, धार्मिकता ही नहीं जागी। तो ये ए बी सी डी क्लासेस छोड़ो, केवल कॉन्ट्रीब्यूशन के टाइम में ध्यान रखना कि आप जहाँ कनेक्टेड हो वहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करो, कोई दिक्कत नहीं। वो व्यवहारिक बात है लेकिन हार्दिक बात नहीं है। हार्दिक बात तो यह है कि जब भाव उठा, जहां जरूरत लगी वहां आपने सहयोग दिया। ऐसे बनो तो जीवन को जीवन तो के जियोगे, नहीं तो सोच के छोटे छोटे दायरे में कैद होकर के वही मर मिट जाओगे लड़ाई झगड़ा करते करते। और ये अमूल्य जीवन, अमूल्य समझ पाने का अवसर हमारे हाथ से छिन गया तो दोबारा कहां मिलेगा? लोग कह दे ना ये बार बार तो है क्या समझाए, तो बार बार क्या समझाए कि मनुष्य जन्म बड़ा मुश्किल से मिलता है और मिला भी हमको, इतना प्यारा हृदय भी मिला, इस हृदय के प्रेम को हमने बिगाड़ डाला। आप लोग 2-4 किलो दूध रोज खरीदते हो, उस दूध को भी बिगड़ने से बचाते हो, नहीं? दिन भर में उस दूध की 3-4 बार सार संभाल कर लेते हो कि कब गर्म करना है, कब फ्रिज में रखना है, कब फ्रिज से बाहर निकाल कर रखना है, कब इनको दूसरे सामानों से दूर रखना है कि दूध के अंदर कोई नींबू का रस ना गिर जाए, नमक का कण ना गिर जाए। इतना एक 2-1 किलो दूध को भी बचा के रखते हो कि हृदय में रहे हुए प्रेम को फटने से बचाने के लिए थोड़ी भी एहतियात नहीं बरतोगे क्या? क्या वहां एहतियात बरतना हमें नहीं आता? हाँ, वहां एहतियात बरतो, बिजली पानी के इस झंझट में मत पड़ो कि कोई बिजली यूज करता है, कोई पानी यूज करता है तो ये साधु कैसा, वो श्रावक कैसा, वो धार्मिक कैसा, वो अधार्मिक कैसा। एक बहुत प्यारा भजन की 4 पंक्ति सुनाती हूँ। न मैं बिजली बचाता हूँ, न मैं पानी बचाता हूँ, न मैं बिजली बचाता हूँ, न मैं पानी बचाता हूँ। सोच में पड़ गया क्या गा रहे हैं मरा साहब जी ना। सेकंड लाइन सुनो। जरूरी जो नहीं मुझको यूज में ही न लाता हूँ, जरूरी जो नहीं मुझको यूज में ही न लाता हूँ, धर्म को तोड़ने वालों से मैं दूरी बनाता हूँ, न मैं बिजली बचाता हूँ, न मैं पानी बचाता हूँ, प्रेम को तोड़ने वालों से मैं खुदे को बचाता हूँ। प्रेम को तोड़ने वालों से बचाओ अपने आप को, और जो जरूरी नहीं है उसको यूज में मत लाओ, और जो जरूरी है उसको यूज में लेने से पहले थैंक यू बोलो, परमिशन लो, क्षमा मांगो, सद्भावनाएं प्रसारित करो, और काम में लेने के बाद में भी धन्यवाद दो, क्षमा मांगो, दुआएं प्रसारित करो। पानी और बिजली से तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन प्रेम को तोड़ा, दिलों को तोड़ा, वो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। इसीलिए प्रेम को तोड़ने वालों से मैं खुद को बचाता हूँ। न मैं मंदिर बनाता हूँ, न मैं मस्जिद ढहाता हूँ, प्रेम को बांटने वालों से मैं खुद को बचाता हूँ। जहाँ प्रेम बढ़ता है वहाँ मत भटको, वहाँ मत बटो, प्रेम को अखंड बनने दो। जब प्रेम अखंड होगा तो ही परमात्मा स्वरूप हमारे भीतर प्रकट हो पाएगा। उसी का नाम मुक्ति है, उसी का नाम आनंद है। ओम शांति, जय हो।